30 अक्टूबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। छत्तीसगढ़ में माओवादी हमला, दो सुरक्षा बल जवानों और दूरदर्शन के कैमरामैन की मौत।
पुलिस के अधिकारी जवान के साथ साथ एक दूरदर्शन न्यूज का कैमरामैन अच्युतानंद वो भी इस घटना में शहीद हो गए थे और दो पुलिस अधिकारी कर्मचारी और घायल होने की जानकारी मिल रहा है।
रिजर्व बैंक गवर्नर और वित्त मंत्री के बीच मुलाकात, सरकार और आरबीआई के बीच तनाव खुलकर सामने आया।
आरबीआई के बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स होती हैं, वो करीब 2.5-3 लाख करोड़ है, सरकार अब उसपे हाथ डालने की कोशिश कर रही है।
चर्चा होगी राजस्थान में चुनावी सरगर्मी की भी।
बहुत समस्या, अतरी समस्या है, कोई काम नहीं है, कोई मजदूरिया नहीं है, सोरा पालन हराड़े नहीं होता है, गरीब ही।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सर्वप्रिया सांगवान से। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में आज संदिग्ध माओवादियों के हमले में सुरक्षा बल के दो जवानों समेत दूरदर्शन के एक कैमरामैन की मौत हो गई। इस हमले में सुरक्षा बलों के दो जवान भी घायल हुए हैं। मृतक कैमरामैन अच्युतानंद साहू ओडिशा के बोला नगीर के रहने वाले थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत अमरीका में पैदा हुए प्रवासियों के बच्चों के नागरिकता अधिकार खत्म हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनके सलाहकारों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ये उनकी राष्ट्रपति शक्तियों के तहत आता है। अधिकतर विशेषज्ञों को विश्वास है कि जन्मजात नागरिकता का संवैधानिक प्रावधान बिना संसद की मंजूरी के हटाया नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप प्रवासन पर कड़ा रुख अपना रहे हैं और अगले हफ्ते मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। जापान ने दक्षिण कोरियाई अदालत के उस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है जिसमें निप्पन स्टील कंपनी को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जबरन मजदूरी कराने के लिए 4 दक्षिण कोरियाई नागरिकों को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पत्रकारों से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह असंभव है और जापान इसका मजबूती से जवाब देगा। विदेश मंत्री टारो कोनो ने नाराजगी जताने के लिए जापान में दक्षिण कोरियाई राजदूत को तलब किया है। उन्होंने कहा, ये फैसला द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ है जो मुआवजे के अधिकार के मुद्दे को सुलझा चुका है। 1965 में संबंध सामान्य होने के बाद से जापान और दक्षिण कोरिया के बीच जो मैत्रीपूर्ण कानूनी संबंधों की नींव डली थी ये उसको भी उलट देता है। ये अविश्वसनीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मानदंड के खिलाफ है। ये थे जापान के विदेश मंत्री टारो कोनो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन ने सऊदी अरब के मुख्य अभियोजनकर्ता से मांग की है कि वे पता लगाएं कि पत्रकार जमाल खाशोगजी की हत्या का आदेश किसने दिया था। अर्दोआन ने अभियोजनकर्ता से कहा कि ये सार्वजनिक किया जाए कि इस्तांबुल कौन आया था और सऊदी दूतावास में हत्या के लिए 15 लोगों को किसने भेजा था। हत्या के बाद सऊदी अरब में गिरफ्तारियां हुई थीं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नज़दीकी लोगों को उनके पदों से हटाया गया था। हालांकि प्रशासन ने इनकार किया है कि इस हत्या के पीछे क्राउन प्रिंस की कोई भूमिका थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने इस बात को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया है कि सरकार आम चुनाव की तैयारी कर रही है। कल बजट में आश्चर्यजनक से हुई कर कटौती के बाद ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मतदाताओं को दोबारा चुनाव करवाने पर विचार करने को कह सकती हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री ने कहा,
No, we are not preparing for another general election. That would not be in the national interest.
नहीं, हम अगले आम चुनावों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। हम यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे सौदे पर काम कर रहे हैं। ये थे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे के शब्द। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के सबसे खतरनाक सीरियल किलर समझे जा रहे एक पुरुष नर्स ने स्वीकार किया है कि उसने अपने 100 मरीजों की हत्या की थी। ओल्डनबर्ग के उत्तरी शहर में ट्रायल की शुरुआत में निल्स होगल ने यह स्वीकार किया। 6 लोगों की हत्या के मामले में वे पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये हत्याएं उन्होंने 2006 में गिरफ्तार किए जाने से पहले की थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने उत्तरी जर्मनी के 2 अस्पतालों में दवाइयों की घातक खुराक देकर मरीजों की हत्या की। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में संदिग्ध माओवादियों के हमले में सुरक्षा बल के दो जवानों समेत दूरदर्शन के एक कैमरामैन की मौत हो गई है। इधर सरगुजा में भी एक विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि ये हमला चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक दिन पहले ही माओवादियों के हमले में सीआरपीएफ के चार जवान मारे गए थे। अभी इस मामले में घटना की जिम्मेवारी तय हो रही थी कि मंगलवार को माओवादियों ने फिर से दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें सुरक्षा बल के दो जवानों समेत दूरदर्शन के एक कैमरामैन की मौत हो गई। इस इलाके में रिपोर्टिंग के लिए पहुंची दूरदर्शन की टीम सुरक्षा बल के जवानों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी, जहां माओवादियों ने उन पर हमला किया। नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी सुंदरराज पी के अनुसार
पुलिस के अधिकारी जवान के साथ साथ एक दूरदर्शन न्यूज का कैमरामैन अच्युतानंद वो भी इस घटना में शहीद हो गए थे और दो पुलिस अधिकारी कर्मचारी और घायल होने की जानकारी मिल रहा है। जैसा ये टीम मतलब किस पर्पस के लिए और किन कवरेज के लिए गई थे, इसको डिटेल्स अभी हम डिस्ट्रिक्ट से मंगवा रहे हैं।
इधर एक अन्य घटना में संदिग्ध माओवादियों ने राज्य के सरगुजा इलाके में भी एक सड़क निर्माण के दौरान विस्फोट किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सरगुजा में ही प्रचार कर रहे राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बस्तर में माओवादियों का हमला चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है।
वो चाहे प्रेस के लोग हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, कांग्रेस बीजेपी उससे फर्क नहीं, उनके लिए तो सिर्फ समाचार बनाने का है। और यही हिंसा के खिलाफ तो हम लगातार लड़ रहे हैं, इन्हीं के खिलाफ तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का जनमत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए भय पैदा करने के लिए कर रहे हैं, आज इसका मुंह तोड़ जवाब पुलिस।
लेकिन राज्य में नक्सल मामलों के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बस्तर में माओवादियों के हमले का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
करने की बात है तो मैं यहाँ पर विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि ये दोनों घटनाओं का चुनाव से कोई संबंध नहीं। सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें लगी आरोपी को नुकसान पहुंचाने के लिए और ठेकेदार को नुकसान पहुंचाने के लिए आज का एम्बुश लगाया गया था।
अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार में पहुंचने वाले राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री लगातार यह दावा करते रहे हैं कि माओवादियों को पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन एक के बाद एक होने वाले माओवादी हमलों ने इन दावों को गलत साबित कर दिया है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
नरेंद्र मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच का तनाव अब और खुलकर सामने आ गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया है कि रिजर्व बैंक ने कांग्रेस कार्यकाल में बैंकों के कर्ज देने पर कंट्रोल नहीं रखा, जिसकी वजह से बैंक अब बुरी हालत में है। जेटली का ये बयान बैंक के डिप्टी गवर्नर के उस भाषण के जवाब में आया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार रिजर्व बैंक के काम में बेजा दखल दे रही है। पूरे मामले पर सुने एक रिपोर्ट फैसल मोहम्मद अली से।
मुंबई में दी गए एक स्पीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा कि जो हुकूमतें केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करती, वहां की अर्थव्यवस्था को विकट स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को मुंबई में दिए गए भाषण में उन्होंने अर्जेंटीना का भी जिक्र किया। अर्जेंटीना में हुकूमत ने वहां के केंद्रीय बैंक के कामकाज में बेजा दखल किया था और उस पर कुछ फैसले लेने के दबाव बनाए थे, जिसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। समझा जाता है कि आचार्य के इस भाषण को उनके बॉस रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल की हामी थी। तो आखिर 2016 से 2018 अक्टूबर के बीच क्या बदल गया जो मोदी सरकार के करीबी बताए जाने वाले उर्जित पटेल हुकूमत से इस कदर नाराज हैं? वहीं उर्जित पटेल जो प्रधानमंत्री के अचानक से लागू कर दिए गए नोटबंदी पर भी खामोशी साधे रहे थे। रघुराम राजन ने जो पूर्व गवर्नर थे साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने नोटबंदी का विरोध किया था। आर्थिक जगत के अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पूर्व संपादक एमके वेनु रिजर्व बैंक और मोदी सरकार के बीच दूरी की वजह यूं बयान करते हैं।
जो उन्होंने एक फरवरी में सर्कुलर निकाला था, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं, जिन्होंने 4-5 लाख करोड़ कर्जा लिया हुआ है बैंकों से और वापस नहीं लौटा रहे और डिफॉल्ट हो गया उनका, उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि 1 अक्टूबर के बाद इन सबको बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स पे जाना पड़ेगा, इनको दिवालिया इनका डिक्लेयर होगा, इसके बाद आरबीआई इनको राहत नहीं देगी, उसको लेके भी तनाव है।
रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की यूनियन ने भी मामले में गवर्नर का पक्ष लिया है, लेकिन बैंक के रिजर्व फंड को निकालने की कोशिश तनाव की ताज़ा वजह हो सकती है, लेकिन इसके पीछे ब्याज दर भी एक बड़ी वजह रही है। सरकार चाहती है कि केंद्रीय बैंक दर को कम करे ताकि बाजार में पैसा पहुंचे, उद्योग धंधे बढ़ें जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हो। बैंक की सोच रही है कि अगर बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ गया तो महंगाई और बढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त करों और उत्पाद की बढ़ी हुई लागत की वजह से महंगाई पहले से ही आसमान छू रही है। रही सही कमी पूरी कर दी है तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों ने, सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एमके वेणु कहते हैं,
इकोनॉमी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, वित्तीय घाटा, सरकार ने जो टारगेट रखा है वो टारगेट चूक रहा है। 3.3% ऑफ जीडीपी रखा था इस वित्तीय वर्ष के लिए, और कुछ समय से सरकार थोड़ी डेस्परेट भी हो रही है और कई पब्लिक सेक्टर कंपनियों से पैसा निकाल रही है। इस बार इन्होंने आरबीआई के बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व होती है, वो करीब 2.5-3 लाख करोड़ है, सरकार अब उस पे हाथ डालने की कोशिश कर रही है।
अब जब चुनाव सर पर है तो सरकार क्या बड़े उद्योगपतियों से नाराजगी ले सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। आरबीआई ने कुछ खस्ता हाल बैंकों द्वारा उद्योग धंधों को कर्ज देने के नियमों को भी कड़ा कर दिया है। बैंक के मुताबिक भारतीय बैंकों के पास $150 अरब का बुरा कर्ज यानी एनपीए है, और वो अगर बिना कड़ी देखरेख के कर्ज देंगे तो की हालत और खराब हो जाएगी। सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच इन मामलों पर तनाव जारी ही थे कि उसने आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों जैसे एस गुरुमूर्ति और सतीश मराठियों को आरबीआई में मनोनीत कर दिया, जो बोर्ड की बैठकों में सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाने का काम करते रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि साल 2008 से 14 के बीच केंद्रीय बैंक ने कर्ज दिए जाने के मामले में बड़ी ढील दी थी और बैंकों की खस्ताहाल होने की ये एक बड़ी वजह है। 2008 से 2014 यानी कांग्रेस का कार्यकाल। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक रैली में कहा था कि मुख्यमंत्री के बेटे का नाम पनामा पेपर लीक्स में आया था। हालांकि बाद में राहुल गांधी अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि वो कंफ्यूज हो गए थे। शूरे नियासी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले चुनाव को लेकर सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुट गए हैं। सोमवार को झाबुआ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक्स मामले में शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम लिया तो मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भोपाल अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर कर दिया। न्यायाधीश ने गवाही के लिए 3 नवंबर का समय दिया है। कार्तिकेय के अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने बताया,
उन्होंने झाबुआ में कल एक चुनावी रैली के दौरान स्टेटमेंट दिया था कि शिवराज सिंह जी के बेटे का नाम पनामा पेपर्स लीक्स में भी आया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पनामा पेपर लीक्स के बेसिस पे सजा हो गई है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि पनामा पेपर लीक से या किसी भी तरह कोई लीक से ना शिवराज सिंह जी का कोई संबंध है ना उनके बेटे का कोई संबंध है, बेसलेस एलिगेशन है।
वहीं इस मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हें लेकर परेशान है, यही वजह है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई गली का नेता यह आरोप लगाता तो अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप लगाना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में इस स्तर तक नहीं उतरना चाहिए।
रोज मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं, कोई गली का चौराहे का नुक्कड़ का नेता आरोप लगाता अलग बात थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी बिना सोचे समझे या सोच समझ के, और बेटा तो राजनीति में है ही नहीं, अभी अभी उसने पढ़ाई पूरी की है, उसका नाम ले दिया। मैं सोचता हूँ कि राजनीति किस घटिया स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। कांग्रेस मेरे विरोध में अंधी हो गई है, इसलिए रोज आरोप झूठे लगाती रहती है।
वहीं राहुल गांधी अपने बयान से पीछे हट गए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वाले इतने घोटाले करते हैं कि उन्होंने यह सब कंफ्यूजन में कह दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम पनामा पेपर लीक्स में आया था, इसी के चलते राहुल गांधी ने कार्तिकेय का नाम गलती से ले दिया।
बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं,
कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैंने नहीं, कल मैं कंफ्यूज हो गया। कल मैंने सोचा कि पैनामा पेपर वाले इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स हैं। मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया, नहीं नहीं किया।
राहुल गांधी इस वक्त मध्य प्रदेश के मालवा इलाके की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। कल उन्होंने इंदौर में एक रोड शो किया था, आज वह क्षेत्र के दूसरे इलाकों में कांग्रेस के प्रचार के लिए गए हैं। प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव है और 15 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी इस बार वापसी की कोशिश में लगी हुई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा को चौथी बार सत्ता में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। राजस्थान में नई सरकार चुनने में अब एक माह से कुछ अधिक का समय बचा है। सत्तारूढ़ बीजेपी विकास को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राज्य में कोई विकास हुआ ही नहीं। इससे अलग चुनाव में कहीं तो धार्मिक आस्था का दांव भी आजमाया जा रहा है। सामाजिक संगठन कहते हैं कि राजनीतिक दल भावनात्मक मुद्दों का सहारा ले रहे हैं। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
न साधनों की कमी है न सिपह सलारों की। हर सियासी पार्टी और नेता अपनी उपलब्धियों की मनोहारी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। प्रचार और इश्तिहार कहते हैं इस रेगिस्तानी भूभाग में जबरदस्त विकास हुआ है। सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी सरकार के कामकाज पर वोट मांग रही है, लेकिन राजधानी जयपुर से बहुत दूर पलासिया गाँव की नानकी कहती है जिंदगी बहुत दुश्वार है।
जी जी पैसा सब रोजगार काम साल नहीं रही हूँ। मास्टर है, मास्टर एक आवे नहीं, एक दिन आवे नहीं, एक दिन आवे नहीं, आवे 10-11 बजे आवे, 5 बजे छुट्टी कर दी। वो कई बनाई था, बहुत समस्या समस्या अतरी समस्या है। कई काम नहीं है, कई मजदूरिया नहीं है, सोरा पालन हरा नहीं जोता है। गरीब गरीब नहीं सो गरीब ही बुढ़ा रोड माता पड़ी रही है। कई नहीं,
नरेगा का काम बंद है, मजदूरी नहीं मिल रही है, स्कूलों में मास्टर नहीं आते, बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो रहा है, गरीब की कोई नहीं सुनता। ये थे नानकी के शब्द। सत्ता में वापसी का सपना लिए बैठी कांग्रेस का आरोप है कि इन 5 सालों में बीजेपी ने राज्य का बहुत नुकसान किया है। राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा कहती है मुद्दे तो बहुत हैं।
मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा, महंगाई का मुद्दा है, अपराध का संस्थागत होना, भ्रष्टाचार का इस प्रकार से बढ़ना कि वो अनियंत्रित होकर के और एक तरह से पार्टी ने उसको संस्थागत ही कर दिया यहाँ पे। तो ये मुद्दे जिसे जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। और महंगाई का तो ये स्तर हो गया कि आदमी अगर 10,000 रुपये महीना भी कमाता हो तो उसके घर का खर्चा नहीं चल सकता। तो आज राजस्थान की स्थिति बेहद खराब है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ रहे हैं। तो जनता में चौतरफा आक्रोश है और जनता पूरी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रही है ताकि स्थायी सरकार जो संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण कर सके, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कर सके, उसे लाने का उसका पूरा मानस।
सत्तारूढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कांग्रेस तो खुद मैदान से गैर हाजिर रही है। राज्य बीजेपी के प्रवक्ता पंकज मीणा कहते हैं बीजेपी अपने विकास कार्यों के दम पर ही चुनाव मैदान में डटी है।
देखिए कांग्रेस का ये कहना वाजिब भी है क्योंकि वो खुद 4.5 साल तक नजर रहे, इसलिए उनको कोई राजस्थान में विकास दिखेगा भी नहीं कि जो आदमी 4.5 साल तक राजस्थान की भूमि पर रहा ही नहीं तो उसको विकास कहां से दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा विकास के मुद्दों के ऊपर काम करता है और विकास के मुद्दे के ऊपर ही वो चुनाव लड़ता है। पिछले 5 साल में राजस्थान में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार ने जो सर्वांगीण विकास राजस्थान का काम किया है वो हम उन्हीं को मुद्दे के बनाकर उन्हीं विकासवाद के आधार पर ही हम वोट मांगने जनता के बीच में जाएंगे।
अभी 2 दिन पहले ही राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने धर्म के आधार पर हिंदुओं से वोट का आह्वान कर विवाद खड़ा कर दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे कहते हैं सियासी दल वास्तविक मुद्दों को सतह पर नहीं आने देना चाहते हैं।
अभी तो मुद्दा ये है कि कुछ कुछ इलाके में कहते हैं कि गाय को बचाना है, एक जगह तो कहते हैं कि हमारे इस जाति का वो बोलबाला है तो टिकट सब कह रहे हैं इस जाति का है। ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं कि हम अच्छा राज देंगे जिसका कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, या कह रहे हैं कि 5 साल बहुत अच्छा दिया, या कह रहे हैं 5 साल हम बहुत अच्छा देंगे। तो असली जनता के जो रोज के मुद्दे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है उस पर चर्चा नहीं, उनको उनके कृषि के भाव नहीं मिल रहे हैं।
कभी कोई विमान उड़ा, कभी कोई रथयात्री खूबसूरत ख्वाब बांटते राजमार्ग और पगडंडियों से गुजरा। सियासत का यह कारवां बेदस्तूर चलता रहा, लेकिन आम आदमी उसी मकाम पर खड़ा है जहां वो पहले था। शायद इस बार हालात कुछ बदले। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
Thank you. दिन भर शॉर्ट वेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 9,510 और 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में पिता पुत्र की एक जोड़ी इस समय काफी चर्चा में है। दरअसल आईपीएस बेटे की राजधानी लखनऊ के जिस इलाके में तैनाती हुई है, पिता उसी के अधीन एक थाने में काफी समय से कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। ऐसे में पिता पुत्र के सामने निजी संबंधों और ड्यूटी दोनों को निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। सुनिए लखनऊ से समीर आठभट मिश्र की ये रिपोर्ट।
लखनऊ में गोमती नगर के विभूति खंड थाने में तैनात कांस्टेबल जनार्दन सिंह को ये बात तभी मालूम हो गई थी कि एक दिन उन्हें अपने बेटे के अधीन काम करना पड़ेगा और उसे सैल्यूट भी करना पड़ेगा, जब उनके बेटे का आईपीएस में चयन हुआ था। लेकिन ये दिन इतनी जल्दी आएगा इसका अंदाजा नहीं था। जनार्दन सिंह के आईपीएस बेटे अनूप सिंह का उन्नाव से जब लखनऊ तबादला हुआ तो उन्हें एसपी नॉर्थ का चार्ज मिला और विभूति खंड थाना भी उन्हीं के अधीन आता है। जनार्दन सिंह कहते हैं कि आईपीएस बेटे को एक सिपाही की हैसियत से सैल्यूट करने में उन्हें गर्व का अनुभव होगा।
बस हम लोग बाप बेटे हैं, बस बाप बेटे हैं। फील्ड में अगर मैं किसी अन्य अधिकारी को सैल्यूट कर सकता हूं तो उनको क्यों नहीं करूंगा, तो बिल्कुल करूंगा। यहां वो पोस्ट हुए ना, उन्हें पोस्ट होते कोई और पोस्ट होता, मुझे तो किसी न किसी के अंडर में काम करना है, बड़ा स्पष्ट है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, जब आईपीएस हो गया तो मैं निश्चित श्योर हो गया कोई ऐसा दिन आएगा कि हम उनके अंडर में काम करेंगे।
वहीं अनूप सिंह का कहना है कि उनके पिता उनके अधीनस्थ कर्मचारी भले हैं, लेकिन इससे न तो उनके निजी रिश्ते में कोई फर्क पड़ेगा और न ही कर्तव्य निर्वहन में कोई बाधा आएगी।
हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक प्रोफेशनल जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा अभी तक का रिश्ता है वो रहेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ है तो प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पद पर रहते हुए जिस जिस काम के लिए हमारा हमसे अपेक्षा है उसी काम को हम लोग अपने पूरे मनोयोग से करेंगे। जितनी भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं उसमें सैल्यूट का जवाब सैल्यूट ही होता है, तो हम लोग का जो ये कस्टम है, जो हमारी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस में हम लोग ये पहले से भी करते आए हैं और एकदम सहज प्रक्रिया है, एक अभिवादन की प्रक्रिया, हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
जनार्दन सिंह का परिवार गोमती नगर में ही अपने मकान में रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अभी पिता पुत्र दोनों घर में साथ ही रहते हैं। ये अलग बात है कि अनूप सिंह जल्द ही पुलिस अधीक्षक के तौर पर मिलने वाले अपने सरकारी आवास में चले जाएंगे। जनार्दन सिंह कहते हैं कि पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन जब वो आईपीएस हुआ तब ये जरूर समझ गया कि ऐसा कभी न कभी जरूर होगा। अनूप के बचपन को याद करते हुए जनार्दन सिंह कहते हैं,
कभी कुछ नहीं, किसी चीज की कभी जिद नहीं करता था, कभी नहीं करता था कपड़ा जूता या कुछ नहीं, कोई चीज जैसे होते नहीं बच्चे, पापा पैसा दे दो तो यह सब मैंने सुना ही नहीं। अपने चुपचाप बस्ता लाद के स्कूल जाता था, स्कूल जाने में कोई कमी नहीं, स्कूल चला जाता था, चला आता था, थोड़ा बहुत होमवर्क था अपने आप कर लेता था, क्योंकि इतने साधारण स्कूल में पढ़ता था।
जनार्दन सिंह और अनूप सिंह दोनों का कहना है कि पिता पुत्र के संबंध उनकी ड्यूटी में आड़े नहीं आएंगे, लेकिन सामान्य शिष्टाचार और सामाजिक जीवन में भी ये दोनों इसे कितना निभा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर भागलपुर जेल से अब पटियाला जेल शिफ्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश देते हुए बिहार सरकार से पूछा है कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पूरा विवरण दे रही हैं पटना से सीतू तिवारी।
ब्रजेश ठाकुर का नया ठिकाना अब पंजाब की पटियाला जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की सुनवाई करते हुए जस्टिस एमबी लोकुर, एसएसए नजीर और दीपक गुप्ता की 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। ब्रजेश ठाकुर बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मुख्य आरोपी है। बालिका गृह कांड से जुड़ी वकील फौजिया शकील ने बीबीसी से बातचीत में बताया,
तो आज जो ब्रजेश ठाकुर की तरफ से वकील साहब अपीयर कर रहे थे, उन्होंने टाइम मांगा कि आपको 2-3 हफ्ते का टाइम दिया जाए ब्रजेश ठाकुर की तरफ से। कोर्ट ने कहा नहीं, 2-3 हफ्ते बहुत लंबा मोहलत होता है, इस 2-3 हफ्ते में तो आप बहुत इन्फ्लुएंस कर देंगे विटनेसेस को जेल में रहकर भी, इसलिए कहा है, ऑर्डर किया है कि आज या कल दोनों में से एक दिन में ही शुड बी मूव्ड आउट, वो हाई सिक्योरिटी पटियाला जेल में उनको ट्रांसफर किया जाए।
ब्रजेश ठाकुर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सीबीआई की इस दलील के चलते ही बीती 10 अक्टूबर को ब्रजेश ठाकुर को मुजफ्फरपुर से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। बीती 25 अक्टूबर को भी कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस देकर ये पूछा था कि क्यों नहीं उसे बिहार से बाहर किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने बिहार सरकार से बुधवार तक इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने 20 सितंबर के बाद इस मामले की जांच में लगे सीबीआई अधिकारियों की लिस्ट भी मांगी है।
बेसिकली मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कोर्ट में, चंद्रशेखर वर्मा जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया, बट एफआईआर में मंजू वर्मा का भी नाम है। मंजू वर्मा का बेल एप्लीकेशन पटना हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया 20 दिन पहले, फिर भी बिहार सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ही सीरियस बात है, जब तक शी इज एन एक्स टेररिस्ट था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर है।
इससे पहले सोमवार को मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। बीती 25 अक्टूबर को चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर भी उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाई थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में चंद्रशेखर वर्मा का नाम आने के बाद सीबीआई ने उनके चेरिया बरियारपुर के श्रीपुर गांव स्थित घर पर बीती 17 अगस्त को छापेमारी की थी, जहां से प्रतिबंधित हथियारों की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर आर्म्स एक्ट लगाया गया था। इस बीच ब्रजेश ठाकुर की बेटी निकिता आनंद ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है।
ये तो सरासर परेशान ही करना हो गया ना। सीबीआई ने बोल दिया कि उनके पास मोबाइल था, बस मोबाइल उनके पास कभी रहा नहीं जेल के अंदर। मुजफ्फरपुर में सेल के अंदर उनको रखा गया, 3 दिन बॉडीगार्ड के साथ रखा गया, और उसके कारण भागलपुर पहले शिफ्ट कर दिया गया, भागलपुर से मुजफ्फरपुर शिफ्ट कर दिया गया। हमारे सारे बैंक अकाउंट सीज हैं, कंकाल निकलवा दिया गया, जो हमारे यहाँ काम पहले करता था वो पागल है, वो एकदम पागल है, उसका सारा रिपोर्ट है पागल।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की बिहार के शेल्टर होम पर रिपोर्ट आने के बाद ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण और बेहद अमानवीय बर्ताव के मामले का खुलासा हुआ था। ये बालिका गृह सेवा संकल्प नाम की संस्था चलाती थी, जिसका मुख्य संरक्षक ब्रजेश ठाकुर था। सीतू तिवारी, बीबीसी पटना।
और अभी एक नजर आज के खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल मुंबई में चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया, जहां भारत ने 224 रन से जीत दर्ज की। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज खलील अहमद को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे वनडे मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से ऑफिशियल वार्निंग मिली है। खलील अहमद को 14वें ओवर में सैमुअल्स के आउट होने के बाद कुछ कहते हुए सुना गया था। आईसीसी ने मंगलवार को कहा कि खलील अहमद को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इस बात पर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का कहना है,
देखिए अभी वो युवा खिलाड़ी है, अभी उन्होंने खेलना शुरू किया है, तो ऐसा ऐसा उनको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि कई बार एक्साइटमेंट में ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखिए हर युवा खिलाड़ी जो है अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है, अपना जोश दिखाना चाहता है, कई बार थोड़ा सा वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, पर मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो आने वाले समय में ऐसा नहीं करेंगे। पर आजकल जो आईसीसी है काफी सख्त है, वो बड़ी जल्दी डिसीजन लेती है और फाइन भी करती है आपको।
अब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अगला मुकाबला होगा 1 नवम्बर को। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की श्रृंखला की बात है तो 2-1 से भारत आगे है, अब एक मैच बाकी है, उसके बाद भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 T20 मुकाबले होंगे। और अब बात फुटबॉल की। कल मुकाबला हुआ प्रीमियर लीग में, मैनचेस्टर सिटी और टॉटनम के बीच मैनचेस्टर सिटी ने टॉटनम को 1-0 से हरा दिया। अब प्रीमियर लीग में 3 नवम्बर को मुकाबला होगा बॉर्नमथ का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, एवर्टन का ब्राइटन के साथ और आर्सेनल का लिवरपूल के साथ। जाने से पहले बात टेनिस की। सिंगापुर में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने स्लोएन स्टीफन्स को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर WTA फाइनल्स अपने नाम किया। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में आज संदिग्ध माओवादियों के हमले में सुरक्षा बल के 2 जवानों समेत दूरदर्शन के 1 कैमरामैन की मौत हो गई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर विचार कर रहे हैं, जिसके तहत अमरीका में पैदा हुए प्रवासियों के बच्चों के नागरिकता अधिकार खत्म हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनके सलाहकारों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ये उनकी राष्ट्रपति शक्तियों के तहत आता है। जापान ने दक्षिण कोरियाई अदालत के उस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें निप्पन स्टील कंपनी को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जबरन मजदूरी कराने के लिए 4 दक्षिण कोरियाई नागरिकों को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन ने सऊदी अरब के मुख्य अभियोजनकर्ता से मांग की है कि वे पता लगाएं कि पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या का आदेश किसने दिया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।